अय्यूब अध्याय 13, अध्याय 13 पद 1 से लेकर 3 तक। सुनो, मैं ये सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूं। जो कुछ तुम जानते हो वो मैं भी जानता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। यदि तुम मुझसे कहते हो कि परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाऊं, तो मैं तो जरूर ऐसा करूंगा। मैं परमेश्वर से विवाद भी जरूर करूंगा। परंतु अध्याय 13 पद 4 और 5, तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सबके सब निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। यदि तुम अपना मुंह बंद रखो तो संभव है लोग तुम्हें बुद्धिमान समझें। अपना मुंह बंद रखो, वे तुम्हें मूर्ख समझते हैं तो समझने दो, इसकी अपेक्षा कि आप मुंह खोलें और अपनी मूर्खता सिद्ध कर दें। अध्याय 13 पद 6 और 7, मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? ऐसी कितनी बार होता है कि लोग परमेश्वर के भय से कैसी दुष्टता का प्रचार करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के बारे में व्यर्थ का प्रचार करते हैं जो परिकल्पना होता है। परमेश्वर कहता है, हाय उस भविष्यद्वक्ता पर जो कहता है यहोवा यूं कहता है, जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा। आज ऐसी बातें बहुत हो रही है। लोग परमेश्वर के नाम में ऐसी बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर ने नहीं कही है। याकूब अपनी पत्री में लिखता है, याकूब 3 अध्याय 1 पद, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यदि मैं आपके सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मुझे परमेश्वर के बारे में सच्चाई व्यक्त करना है, अन्यथा आप परमेश्वर के बारे में गलत धारणा बना लेंगे जिसका लेखा मुझसे लिया जाएगा। कुछ लोग परमेश्वर का ऐसा प्रचार करते हैं कि यदि आप उनका प्रचार सुनेंगे तो सोचेंगे कि परमेश्वर दिवालिया हो गया है। यदि आप आज ही कुछ न करें तो वो नाश हो जाएंगे, उसके सब कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। वो असहाय है, वो अपनी जमानत के लिए आप पर आश्रित है। यदि आप उसे 100 रुपए नहीं देंगे तो वो नाश हो जाएगा। और इस प्रकार वे परमेश्वर के बारे में छल प्रसारण करते हैं। मेरा पुत्र रेडियो प्रचार कार्य के बारे में समझ प्राप्त करना चाहता है। वो वर्ल्ड फॉर टुडे और हमारे रेडियो कार्यक्रमों का कार्यवाहक है। उसने कई ऐसी संस्थाओं से पत्राचार किया कि वो जान सके कि वे कैसे साहित्य प्रसारण करते हैं। वो बेनी सिमित के नाम से पत्राचार करता है और पता हमारा ही होता है, अतः हमें पत्र प्राप्त होते रहते हैं। वे बुरे पत्र नहीं हैं, परंतु कुछ में ऐसा लिखा होता है, प्रिय बेनी, प्रभु ने आपका बोझ मेरे मन में डाला है। मैं आपके लिए उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है कि आप पर कोई समस्या आई हुई है। ये परमेश्वर के लिए छल प्रसारण है, क्योंकि बेनी सिमित नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। कृपया मुझे अपनी समस्या का ब्यौरा दे और मेरी सेवकाई के लिए विशेष दान भेजे। वे लोग भी जो आपको समृद्धि का भेद समझाते हैं, कहते हैं कि यदि आप विश्वास रखें तो महान समृद्धि आपके जीवन में है। आप उन्हें दान भेजें तो परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा और समृद्धि का ये महिमामय सत्य अनेक लोगों तक पहुंच पाएगा। परमेश्वर के बारे में झूठ बोलना, ऐसी स्थिति में होना मेरे लिए घृणित है। अतः अय्यूब उन्हें झिड़काता है, क्योंकि उनकी बातें परमेश्वर के बारे में भ्रम फैलाती है। अध्याय 13:8, क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा चलाओगे? क्या तुम परमेश्वर की ओर से मुकदमा लड़ोगे? परमेश्वर को किसी के पक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप को संभालने में सक्षम है। अध्याय 13:9-11 तक, क्या ये भला होगा कि वो तुमको जांचे? क्या जैसे कोई मनुष्य को धोखा दे, वैसे ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे? जो तुम छिपकर पक्षपात करो तो वो निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? आगे चलकर हम अध्याय 38 में देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं कहेगा। जब वो कहेगा तो उसका कहना भी वही होगा जो आयुब कहता है। वो आयुब के इन शुभ चिंतकों को झिड़केगा। उनमें से एक को तो परमेश्वर खरी खोटी सुनाता है, जो सबसे ज्यादा बोल रहा था। परमेश्वर उनसे कहेगा, तुम लोग आयुब से कहो कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, अन्यथा तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। यही कारण है कि आयुब उनसे कहता है, तुम परमेश्वर के बारे में ये सब बातें करते हो, वो तुम्हें झिड़केगा। अध्याय 13:12 में आयुब कुछ प्राचीन लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। अध्याय 13:12-16 तक, तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है, तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं, फिर मुझ पर जो चाहे वो आ पड़े। मैं क्यों अपने मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। और ये भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। मेरी समझ में तो ये विश्वास की गहराई है। यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही बुरी दशा में है। मेरे कहने का ये अर्थ है कि यदि आप अपने बुरे से बुरे समय का स्मरण करें तो आयुब के कष्टों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। उसकी दशा उससे भी अधिक दयनीय है, परंतु वो फिर भी कहता है, वो मुझे घात करेगा तो भी मैं उसकी सेवा करूंगा। आपका परमेश्वर के प्रति कितना गहरा समर्पण है? अधिकांश विश्वासी उसकी सेवा का दावा वहीं तक करते हैं जहां तक उनके साथ सब ठीक चल रहा होता है। यदि परिस्थितियां बिगड़ी तो वे डावाडोल होने लगते हैं। आयुब जीवन की आशा ही छोड़ चुका है, परंतु फिर भी कहता है कि वो मुझे घात करेगा तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। ये समर्पण है। वो कहता है कि वो परमेश्वर में ही विश्वास रखेगा। हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। इसी विश्वास का परिणाम जीवन में शांति देता है। परमेश्वर के हाथ ही है जिनके नीचे आपको वास्तविक विश्राम प्राप्त होता है। नहीं तो सांसारिक बातें आपको विचलित करती रहेंगी और आपके जीवन में उतल पुतल मचा देगी। यदि आपका विश्वास और भरोसा ऐसा है कि आप कहें, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है और यदि वो मुझे घात भी करे तो भी मैं उसमें विश्वास रखूंगा, तो आप डावाडोल नहीं हो सकते हैं। आयुब भी कहता है, वो मेरे बचाव का कारण होगा, वो मुझे मुक्ति दिलाएगा। अध्याय 13:17-21 तक, चित लगाकर मेरी बात सुनो, मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे ना कर, जब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले, और अपने भय से मुझे भयभीत न कर। अब आप लोग कृपया विदा ले और मुझे डराने का प्रयास न करें। अध्याय 13 पद 22 और 23। तब तेरा बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे। तुम कहते हो कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तो मुझे बताओ कि मेरे पाप कितने हैं। मुझे अपने मसीही अनुभव के बहुत लंबे दौरे से गुजरना पड़ा, क्योंकि मैं परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग्य धर्मी जन बनना चाहता था। मैं उस वरदान को प्राप्त करना चाहता था जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अच्छे अच्छे प्रचारक आदि सब कहते थे, परमेश्वर एक अशुद्ध पात्र को आत्मा से नहीं भरेगा। तुम्हें अपने कर्मों का शोध करना होगा यदि तुम्हें आत्मा चाहिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो अशुद्ध पात्र में प्रवेश नहीं करेगा। अतः मैं अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने लगा। जब मैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा पाने की प्रार्थना करता था, तब मैं अपने सब पापों का अंगीकार करता था। मैं लोगों को कहते सुनता था, मैंने अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर वेदी पर रख दी और कहा, परमेश्वर इसका अंत हुआ। तब परमेश्वर ने मुझ में अपना आत्मा भर दिया। जब मैंने परमेश्वर के सामने प्रण किया कि मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, तब परमेश्वर ने तुरंत मुझे आत्मा से भर दिया। जब मैं परमेश्वर से कहा कि मैं चीन जाऊंगा, उसने तुरंत मुझे आत्मा से भर दिया। अब मेरी समस्या तो ये थी कि ना तो मैं सिगरेट पीता था, ना ही मैं शराब पीता था, तो फिर मैं किस चीज का त्याग करता। मैंने परमेश्वर से ये भी कहा कि मैं चीन जाऊंगा। मैं सोच सोच कर अपने कुकर्मों का परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करता और क्षमा याचना करता और अनेक प्रकार के प्रण करता कि मैं और भी भला जीवन जीऊंगा। मैं अधिक प्रार्थना करूंगा, मैं अधिक अध्ययन करूंगा, वचन अधिक पढ़ा करूंगा, परंतु मुझे आत्मा नहीं मिला। इस कारण मैं विचलित होने लगा, क्योंकि मेरे एक मित्र को आत्मा मिल गया था। मेरे विचलित होने का दूसरा कारण ये भी था कि मेरा वो मित्र सिगरेट पीता था, मैं सिगरेट नहीं पीता था। अतः मैं उसे अधिक धर्मी ठहरा, तो फिर उसे पवित्र आत्मा का दान कैसे मिला और मुझे नहीं मिला। मैं बड़ी परेशानी में था। मैं सदैव यही प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे बता कि मुझ में क्या कमी है, मेरा पाप मुझ पर प्रकट कर। यहां भी देखिए, आयुब के मित्र उससे कहते हैं, तू बहुत बड़ा पापी है, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता यदि तू बहुत बड़ा पापी नहीं होता। आयुब उनसे कहता है, मुझे मेरे पाप तो बताओ, यदि तुम कहते हो कि मैं पापी हूं, तो मेरे पाप मुझ पर प्रकट करो और मेरी सहायता करो। वे कहते हैं, आयुब कोई गुप्त बात अवश्य है जिसे तू हमसे छिपा रहा है, हम तो देख नहीं सकते, परंतु तुझ में पाप आवश्यक है। इस पर आयुब ने कहा, अध्याय 13 पद 24, तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है। इन शब्दों के भावार्थ को समझने के लिए आपको उन्हें साक्षात देखना होगा। वहां के लोग शांत स्वर में बातचीत नहीं करते हैं, वे चिल्ला चिल्लाकर शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि उनमें कभी भी मारपीट हो सकती है। उनका शब्दोच्चारण भी बड़ा कर्कश होता है, आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि वे क्या कह रहे हैं। साथ ही वे अपने हाथों को भी हिलाते हैं, सिरों को भी हिलाते हैं, वे तरह तरह के संकेत करते हैं और पूरा शरीर भी हिलाते हैं। आयुब के साथ भी ऐसा ही वार्तालाप चल रहा है। जब आयुब ने उनसे कहा कि वे उसके पाप तो उसे बताए, तब उन्होंने अपनी मुंह दूसरी ओर कर लिया। आगे चलकर और भी शारीरिक मुद्राएं आएंगी, अतः आपको उनके शारीरिक प्रदर्शन की भी कल्पना करनी होगी। वे वास्तव में चिल्लाकर बातें कर रहे हैं। इस वार्तालाप में ओह आह, मुंह का ढापना तथा अनेक प्रकार की आवाजें आदि सब है। इसी कारण यहां आयुब कहता है, अध्याय 13 पद 24 से लेकर 28 तक, तो किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है और मेरे पावों को काट में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है और मेरे पावों के चारों ओर सीमा बांध लेता है और मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूं जो नाश हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूं।